हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तभी वहाँ अचानक एक बड़ा ही बुजुर्ग सा आदमी वहाँ आया था और उस औरत की ओर देखकर कहने लगा था, अरे डायन, तो यहाँ क्या कर रही है? क्यों इस तरह से जिंदा इंसानों का मांस खाती है?
आपने शादी करने का भी नाटक रचाया, लेकिन ना तो अमन और ना ही तारा, दोनों में से कोई भी अभी तक हमारी उस जगह पर आया है। और अब हम करें तो करें क्या? तभी अमित उसकी ओर देखकर कहने लगा था, तुम फटाफट से एक लड़की का इंतजाम करो, और हाँ, इस बार किसी तरह की कोई गलती नहीं होना चाहिए। लड़की इंसान होनी चाहिए, समझ रही हो ना मेरी बात? लड़की कोई इंसान होनी चाहिए। और तुम मुझसे मेरी शादी की पूरी बातें उनके दिलो दिमाग में अच्छी तरह से बैठा दो। एक और बात, अभी अमन कहाँ गया है, कहाँ नहीं, और उसकी बीवी के साथ उसका क्या मसला चल रहा है, इस बात के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत जल्द अमन आएगा और अपनी बीवी को साथ लेकर आएगा, क्योंकि तारा के बिना एक पल नहीं रह सकता है। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तो तुम्हें अब जल्द से जल्द अमन को अमन के साथ रात गुजारनी होगी। मैं कितने ही मौके दे चुका हूँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ करके अमन बच निकलता है। लेकिन इस बार जब मैं अपने दानव का अमन के जिस्म में प्रवेश करवाऊंगा, उसके बाद चाहकर भी अमन खुद को तुम्हारे पास आने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो दानव मेरा ही एक रूप होगा जो उसके अंदर जाएगा, और उसे वक्त तुम्हें अमन के आसपास रहना होगा, क्योंकि मैं अमन को इतना ज़्यादा अंदर से व्याकुल कर दूंगा कि उसे किसी औरत के जिस्म की सबसे ज़रूरत पड़ने लगेगी। और फिर तुम जैसे ही उसके सामने आओगी तो वो तुम्हारे साथ रिश्ता ज़रूर बनाएगा। जैसे ही महाकाल शक्ति के मालिक अमित ने एक बार फिर ये सारी बातें बोली, अब तो मल्लिका मानो हवा में उड़ने लगी थीं, क्योंकि भले ही उनका ये मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन हर बड़ी के बात सोचकर वो खुश ज़रूर हो जाया करती थीं। तभी मल्लिका ने अमित से कहा था, लेकिन आखिरकार हमें ये भी तो पता लगाना चाहिए कि आखिरकार उसकी इंसानी बीवी तारा कहाँ है, और जिन महाराज अमन रेगुलरली ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि भले ही वो जिन महाराज बन गया हो, लेकिन इंसानों के रूप में वो अमन सिंह राठौड़ है, तो उसका बड़े बड़े योगों से मिलना, साथ ही साथ उनके प्रोजेक्ट, उनके काम के बारे में बातें करना भी ज़रूरी है। तभी काली शक्ति का मालिक अमित ने मल्लिका से कहा था, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अमन को देखे बगैर नहीं रह सकते हो। तुम्हारे अंदर अभी भी शायद ऐसी आग लगी हुई है जो शायद मैं नहीं बुझा सकता है, जो कि मैं भी नहीं बुझा पा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करता तो हूँ कि मैं तुम्हें खुश रख सकूँ। जैसे ही काली शक्तियों के मालिक का कोई इतनी बुरी तरह से देखते हुए ये सब कहा, मल्लिका अंदर ही अंदर चिढ़कर रह गई थी। उसका दिल तो कर रहा था कि अभी वो इस काली शक्तियों के मालिक अमित का खून पी जाए। कहीं ना कहीं अमित को वो बेवकूफ़ समझा करती थी, क्योंकि उसका आज तक कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। लेकिन उसे ये भी पता था कि उसे अमित के साथ ही रहना है, क्योंकि जो काला साया उसने उसके जिस्म में डाल रखा था, वो अमित ने ही उसके अंदर डाला था, जिसके द्वारा वो बड़ी ही खूबसूरत दिखा करती थी। लेकिन उस काले साये को वो कब का अपने कब्जे में ले चुकी थी, ये बात वो अभी अमित के सामने नहीं आने देना चाहती थी। साथ ही साथ वो उसका एक अंश भी पैदा करवा चुकी थी, जो कि धीरे धीरे जंगल में बड़ा हो रहा था, वो भी उसी की माँ के द्वारा। तो बस कहीं ना कहीं मल्लिका को अब एक सही मौके का इंतजार था कि जल्द से जल्द वो अमन के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाए और तिलस्मी पत्थर हासिल करे और अमित के हष्टपुष्ट जिस्म के साथ वो ज़िंदगी गुजारे। उसे पूरी उम्मीद है कि अगर एक बार अमन उसके जहाँसे में आ जाता है तो वो तारा को तो अमन से दूर कर ही देगी, साथ ही साथ तिलस्मी पत्थर हासिल करने के बाद वो काली शक्तियों की महारक्षक बन जाएगी, और फिर वो आसानी से काली शक्तियों के मालिक अमित को उठाकर कचरे के ढेर में फेंक सकती है और उसका नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उसने अमित से लड़ने के लिए अपना हथियार तैयार कर लिया था, वो भी उसी के बच्चे के रूप में। उसे बस सही मौके का इंतजार था। वहीं दूसरी ओर तारा परी और सोनल परी दोनों ने एक बार फिर अपने हाथ जोड़कर रानी माँ से प्रे करना शुरू कर दिया था, और जल्दी ही रानी माँ ने उन्हें उन दोनों की बात सुनकर उन्हें अपनी गायब होने वाली जादुई शक्तियाँ दे दी थीं,
और एक एक सफ़ेद माला उनके हाथों में दे दी थी और कह दिया था कि जब तक ये सफ़ेद माला उनके गले में रहेगी वो गायब रहेगी। तो इसीलिए तारापरी और सोनलपरी दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और तारापरी की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो तो बस जल्द से जल्द अपने अमन से मिलना चाहती थी, उसे बाहों में भरकर ढेर सारा प्यार करना चाहती थी। और जल्दी ही तारापरी और सोनलपरी ने वो माला पहनकर अमन की हवेली में कदम रख दिया था।